गबन का 17वां सर्ग पेश है आपके सामने। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपये जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा चलो कहीं घूम आवें, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला। बस कल का दिन और था, कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीना भर के लिए और न मान जाएगी? इतने दिन वह और न बोलती तो शायद वह उसे उरीन हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जीत की तो मैं उसे कह दूंगा सराफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न न थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरब्बत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा तुम खूब आई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा मुझे आज बहुत जल्द घर लौट जाना है, बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला जी हाँ खूब याद है, अभी शराफ की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं, 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 महीने से कम में चीज़ तैयार न हो, पर होगी लाजवाब, जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी न पिघली, तिनक कर बोली अच्छा अब महीना भर और लगेगा। ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी न हुई, आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दें, आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है, कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपये लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा, धांधली नहीं मेरी हिमाकत कहिए, मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा, अब आप रुपए मांग रही हैं सराफे रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नेत्रों से देखकर कहा क्यों रुपए क्यों न लौटाएगा? रमानाथ इसलिए कि जो चीज़ आपके लिए बनाई है उसे वह कहाँ बेचता फिरेगा, संभव है 6 महीने में बिक सके, सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है उसका दंड भोगे, मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपकी यदि शराफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरब्बत के सबब से कुछ न कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, नहीं आपको शर्म आती तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूँगी। वाह अच्छी दिल लगी, दुकान नीलाम करा लूंगी, जेल भिजवा दूंगी, इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सराफा की दुकान पर ले जाते, चीज आंखों से देख कर निसंतोष हो जाएगा। रतन मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन कल किस वक्त? रमानाथ दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊँगा। रतन पूरे लूँगी, ऐसा न हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दें। रमानाथ कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता वह रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विश्वंभर को दिया कि मानिक दास को लिखा कर जवाब लाए। विश्वंभर ने कहा पानी आ रहा है। रमानाथ तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी, दौड़ते हुए जाओ। विश्वंभर और वह जो घर पर न मिले? रमानाथ मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपये उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उनका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम, वह चाहें तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सलूक भी न करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौट कर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगे। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर कुछ भी नहीं बोली, मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो है ही, जो कहीं रमेश रुपए दे दें तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास न हों। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। मानिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखना चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए न दिए तो फिर बात भी न पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूँ कि जब वो शतरंज खेलने को बुलाएं तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। आखिर विश्वंभर लौटा, मनिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूँ, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का, अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़ जाते। खैर, देखा जाएगा, चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार न करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद्य मध्य राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता।